نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. خود کو کامیابیوں کی طرف لے جانے کے لیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دھکے پہ دھکا. بہت دھکے کھائے ہیں میں نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنے دھکے پڑے ہیں. میری زندگی میں تو بس دھکے ہی دھکے ہیں, دھکے دھکے دھکے. اتنی بار دھکوں کا ذکر سنا تو میرے دل کو ایک دھکا سا لگا. یعنی یہ جملے اکثر لوگوں کی زبان پہ رہتے ہیں, بڑے دھکے کھا کر آگے آئے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہم دھکے کھا کر جہاں پڑے ہیں. ایک صاحب تھے, یہ لکھتے ہیں کہ میرے آفس میں موجود یہ صاحب جن کی والدہ نے میرا ایک پروگرام دیکھنے کے بعد انہیں مجھ سے ملوانے کے لیے وقت لیا تھا, مسلسل دھکوں کی زد میں تھے. بات شروع ہوتے ہی ان صاحب نے مجھے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ کیسے دنیا نے ان کو دھوکہ دیا, کیسے لوگوں نے ان کے اوپر مظالم ٹھائے, وہ صاحب خود کتنے معصوم اور بے ضرر ہیں. میں ان کے دھکوں سے تنگ آ گیا تھا. مجھے دراصل بہت زیادہ دھکے لگے ہیں, وہ ایک بار پھر ہاری ہوئی آواز میں بولے. میں نے ایک دم ان کی آنکھوں میں مانی خیز انداز میں دیکھا اور مسکرا کر کہا, اگر آپ کو اتنے ہی دھکے لگے ہیں تو پھر آپ سٹارٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے. سمجھ آئیے, گاڑی کو بھی جب دھکے لگاتے ہیں نا تو پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے خلاصہ آج کی گفتگو کا, یہ دھکے ہمیں سٹارٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بعض دھکے نہ پڑیں تو ہم پتہ نہیں اس وقت کہاں خواہشوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اتنے دھکوں کے بعد تو آپ کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا. میں ابھی بھی نہیں سمجھا, ان صاحب کو سمجھ آئی نہ آئی, کم از کم مجھے ان کی گفتگو سے زندگی کا ایک بالکل نیا پہلو سمجھ میں آ گیا. میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو سیلف سٹارٹ ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں نا خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اپنی زندگی کو خود سٹارٹ کر لینے والے, مقصد کی طرف بڑھنے والے اور زندگی میں کامیابی پیدا کرنے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ہم دھکا سٹارٹ کہتے ہیں, یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانے والے, رک جانے والے, دھکوں کی راہ دیکھنے والے, دھکوں پہ چلنے والے. دھکوں کے منتظر لوگ اپنے آپ کو خود سے سٹارٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا دنیا کو مجبوراً ان کو دھکے دینے پڑتے ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں دھکے ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو سیلف سٹارٹ ہیں, دھکے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو سرے سے اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, جو خود سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی جستجو نہیں کر رہے. دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا راستہ خود نہیں بنا رہے. دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگی کے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے عملی طور پر کوئی جد و جہد نہیں کرتے. تو لکھ لیں کس کس کو دھکے لگنے کی ضرورت ہے, جو خود نہیں چل رہے, جن کی سوچ ہی کوئی نہیں کچھ کرنے کی, جن کو اپنی زندگی کو سجانا نہیں ہے, جو خود اپنے راستے نہیں بنا رہے, جو اپنے خوابوں کو سچا کرنے کی کوشش نہیں کرتے عملی طور پر. اور دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں, اس میں بھی ہم سب خود کو ڈھونڈیں. کون؟ دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو سستی کا شکار ہیں, جو چاروں شانے چت لیٹ گئے ہیں, جو اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے, جن کی زندگی میں کوئی واضح ہدف اور واضح منزل نہیں ہے, اس لیے وہ بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. دھکا سٹارٹ لوگ کئی دفعہ ان تمام لوگوں کا راستہ بھی روک لیتے ہیں جنہوں نے اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ان کی وجہ سے منزل پر نہیں پہنچ پاتے. جہاں یہ اپنی دھکا سٹارٹ گاڑی کو سڑک کے عین درمیان میں کھڑا کر کے مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگی کی گاڑی کو سٹارٹ نہ کرنے سے دوسروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کبھی بیچ میں کوئی گاڑی کھڑی کر دے تو پچھلے بھی تو رکیں گے نا. اور کئی جگہ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی گاڑی میں کوئی پرابلم آئے تو یہ سائڈ پہ جو شولڈر ہے اس پہ گاڑی کو اتار دیں. تو بعض دفعہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. وہ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ بعض اوقات وہ آپ کی اپنی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, जिन्हें आपके रुके रहने, आगे ना बढ़ने का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर आप भी धक्का स्टार्ट हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह आप अपने प्यारों की तरक्की की राह में रुकावट बनकर धक्का पड़ने के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। खुद से पूछें, एक एक जुमले को अपने ऊपर लेकर सोचें। कभी आपको मुआशी धक्का पड़ता है, शायद इसीलिए आपको कभी अपनी फैमिली की तरफ से धक्का पड़ता है, कभी आपको जिस्मानी धक्का पड़ता है, यानी घर में कभी कोई मसला खड़ा होता है, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी आपको मुआशी धक्का पड़ता है, यानी कारोबार कोई नहीं है, माल नहीं है, नुकसान हो गया, कभी आपको जज्बाती धक्का पड़ता है। और मुझे लगता है ये धक्के ज़्यादा ही पड़ते हैं हमें, दूसरों के मूड ख़राब होते हैं। और कभी आपको रूहानी धक्का पड़ता है, स्पिरिचुअली, ज़िंदगी के जिस जिस शोबे के अंदर आप तरक्की नहीं कर रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते, वहाँ आपको धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये लिख लें, अगर मैं कहीं रुकी हूँ ना, तो इसका मतलब कि अब मैं दूसरों को मौका देती हूँ कि पीछे से आके मुझे धक्का दे। धक्के लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। धक्के लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच राह में से हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाए, यानी वो आपको हटाकर आगे निकलना चाहते हैं। अगर धक्का स्टार्ट अपनी गाड़ी में बैठे सो रहे हो, पिछले वाले लोग हारन बजा बजा कर इनको जगाने की कोशिश कर रहे हो, इनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो ट्रैफिक रोकने वालों को धक्के दें। समझने की बात यह है कि धक्के खाने की ज़रूरत सिर्फ इन लोगों को होती है जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ख़ुद से स्टार्ट नहीं कर रहे होते। धक्के लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो अपना वक्त और ताकत आपको आगे बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे होते। धक्का लगने के बाद भी जब आप स्टार्ट नहीं होते, तो फिर दूसरा धक्का पड़ता है, फिर तीसरा धक्का पड़ता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी दो तीन धक्कों के बाद भी स्टार्ट ना हो रही हो, तो वो लोग जिनको आपने बड़ी मुश्किल से धक्का लगाने के लिए मनाया होता है, कायल किया होता है, आपकी गाड़ी को ऐन सड़क के बीच छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए कि वो मज़ीद आपको धक्का लगा के वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। वो जान जाते हैं कि आप नाकाबले स्टार्ट हैं, यानी आपकी अंदर से गाड़ी ख़राब हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि धक्के लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, धक्के लगने की वजह क्या है, आपको ये धक्के क्यों पड़ रहे हैं? जानना चाहते हैं तो सुनिए। पहले आप इमेजिनेशन में लाएं, कभी नई गाड़ी को धक्के पड़े, पुरानी गाड़ी को पड़ते ना? जिस गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी रखी हो, क्या उसको धक्के लगाने पड़ते? जिस गाड़ी में खुद पेट्रोल डाला गया हो, वो उसको धक्का लगाना पड़ता? जहाँ पेट्रोल में कचरा ना, वहाँ धक्का पड़ता? तो बस समझ लें, यही हमारा भी नक्श होता है। हमारे अपने अंदर ईमान का पेट्रोल नहीं होता ना, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, तो फिर दूसरों को ज़रूरत पड़ती है कि वो हमें खड़ा करें, होश करो, ये नेकी का मौका है, ये काम का मौका है, ये आगे बढ़ने का मौका है। और जिनको एहसास नहीं होता, वो रोड के बीच में खड़े रहते हैं और शिकवा क्या करते हैं कि लोग हमें पुश बहुत करते हैं। तो पुश तो करना ही पड़ेगा ना धक्के लगाने के लिए। इन धक्कों की वजह दरअसल आप खुद हैं। आपको ये जान के बहुत तकलीफ़ महसूस हुई होगी कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी धक्के पड़ रहे हैं, वो किसी भी किस्म के धक्के हों, इनके पीछे आपका अपना हाथ है। चलिए, सारे ही दुश्मन गए, हमने तो कितने रखे हुए थे सहारे कि इसको पकड़ूंगी, इसको क़यामत के दिन आगे पेश करूंगी, इसको किसी ने ससुराल को रखा हुआ, ये मुझे बस इन्होंने मुझे महरूम कर दिया खुशियों से, किसी ने बच्चों को, किसी ने शौहर को, किसी ने हालात को, माहौल को, बीमारियों को, पता चला सब इधर उधर हो गया, आप अकेले रह गए। इसलिए कि आपने गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को धक्कों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पर, आप में से बस वैगन गाड़ी, ट्रेन या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले अक्सर लोग धक्कों के आदि हो चुके होते हैं। मुझे कैसे पता है ये बात? बहुत अरसा तक मैंने खुद ये धक्के खाए हैं। याद कीजिए जब हम एक बस पे चढ़ना चाह रहे थे, बस हमारे चढ़ने से पहले ही चल पड़ी और लोग एक दूसरे को धक्के दे देकर इस बस में पहले सवार होने की कोशिश कर रहे होते हैं। धक्के खाते खाते आप कई दफ़ा सड़क पर गिर जाते हैं, आप बस के अंदर खड़े होते हैं, धक्का लगता है और आप लुढ़कते हुए पीछे की तरफ जाते जाते आखिरी सीट के किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से नया धक्का पड़ता है और आप साथ बैठे हुए मुसाफिर की गोद में जा बैठते हैं। ये मंज़र कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। कभी आपने उसे पाकिस्तान में किसी बस में सफ़र किया, वैगन में, वो जिसमें कहते हैं कि सीधे घुसो तो कुबड़े होके निकलो, छोटी छोटी छत्तों की वैगनें होती हैं। ये वो वैगनें होती हैं कि 10 लोगों की जगह है ना, तो उन्होंने 14 डाले होते हैं। आगे हो जाओ जी, आगे जगह दो जी, जगह जगह जी जगह, तो वो एक की गोद में दूसरा ही होता है। ये धक्के आपको सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आपने कभी दिल से सोचा नहीं, कभी सच्ची कोशिश नहीं की कि आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी हो सकती है। ज़ाती गाड़ी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से आप ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं, इस रफ्तार से तो आप सारी ज़िंदगी गाड़ी नहीं ख़रीद सकेंगे। इसी तरह तो आप कभी मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप मान क्यों नहीं लेते कि धक्के खाने की वजह आप खुद हैं? क्यों? इसलिए कि आप इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर धक्के पड़ रहे हैं। लेकिन क्या वो शख्स जो वहां मौजूद नहीं, इसको कोई धक्का पड़ेगा? इस बात को समझिए। मेरी नज़र में सारा कसूर धक्के मारने वालों का नहीं है, कसूर इस शख्स का है जो इस जगह पर मौजूद है जहां धक्के पड़ने का इम्कान है। धक्के वाली जगहों पर धक्के नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? आप धक्के देने वालों को बुरा भला कहने की बजाय अपने आप को मलामत कीजिए, अपने आप को सजावार ठहराइए और साथ ही साथ अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप बहुत जल्द धक्के खाने वाली, सर झुकाकर जीने वाली भीड़ में से निकल जाएंगे। जितना सर झुकाएंगे उतने धक्के ज़्यादा पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने कोशिश की, मनसूबाबंदी की, मैंने अपने आप को तैयार किया और फिर अल्लाह ने तौफीक दी, मैं धक्कों वाली इन जगहों से निकल पड़ा और दूर चला गया। इन जगहों से किनारा कशी इख्तियार कर ली जहाँ धक्कों का ज़ोर था, इसलिए कि वो धक्के असल में मुझे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो धक्के मुझे कुछ सिखा रहे थे। थक्के मुझे कह रहे थे कि भाई अपनी ज़िंदगी की रविश बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने ख्यालात बदलो, स्टार्ट हो जाओ। और जब मैंने थक्कों की बात मान ली और ख़ुद को सेल्फ स्टार्ट करने का ज़िम्मा ले लिया, सीख लिया कि ख़ुद को कैसे स्टार्ट रखना है, तो धक्कों से हमेशा के लिए जान छूट गई। बहुत से लोग बातें सुनने के बावजूद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ख़ुद से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए इनके पास बेपनाह बहाने होंगे। आप इसको अपने ऊपर लीजिए। बस दफ़ा हम सिर्फ नाहक बातें सुनते हैं और अगले को मौका देते हैं कि वो नाहक बातें करें। हम सब्र करके मज़लूम बनते हैं, जन्नत पाते हैं, अगले को हम जालिम बनाकर जहन्नुम में जाने के काबिल कर देते हैं। और बाद में कोई आपसे पूछें कि आप क्यों गलत बात सुनती हैं, तो जवाब क्या होता है? क्या करें, फिर जीना तो है ना, फिर क्या करें। और बहुत सारे लोग हैं जो बहाने क्या बनाते हैं, यार अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है। कोई कहता ये मेरा काम नहीं, कोई कहता अभी वक्त नहीं है, कोई कहता है ये बहुत मुश्किल है, कोई कहता है ये काम बहुत टाइम लेगा, ये इतना आसान नहीं, कोई कहता है मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, अभी मैं नींद की हालत में हूँ, मैं सदमे की हालत में हूँ, अभी तो मेरा पुराना ज़ख़म भी नहीं भरा है, कोई कहता है मेरे तो वालदैन भी मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरे तो भाइयों ने मेरा साथ तक नहीं दिया, मैं तो अपनी बीवी को एक आँख नहीं भाता, मेरे तो बच्चों ने मुझे सहारा नहीं दिया। आपकी बहानों की फहरिस्त में क्या लिखा है? आपके पास बीसियों वजूहत हो सकती हैं जो आपको कायल करेंगी कि आपने अपनी गाड़ी को बीच सड़क के खड़ा रखना है, स्टार्ट नहीं होना, अभी और धक्कों का इंतज़ार करना। कितने लोग हैं जो ज़िंदगी में यही जुल्म कर रहे हैं खुद पे। अगर आप चाहें तो मैं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी खुद स्टार्ट करने का आपको गुर बताता हूँ। यानी आप चाहते हैं, पहले इतने चाहते भी हैं कि आप सब भी सोच रहे हैं कि हमें तो आज तक धक्का नहीं पड़ा, हम तो बाहर के मुल्कों में, पड़ा कभी धक्का? धक्के रोज़ पड़ते हैं, हम आदि हो जाएं, ढीठ हो जाएं, ये अलग बात है, धक्के रोज़ पड़ते हैं। तो फिर ख़ुद को स्टार्ट रखने का तरीका क्या है कि एक इंसान ये सोचे कि हमने क्या करना है। अब जब आप लोगों को ये बातें कहेंगे ना, वो कहेंगे इसकी जगह अच्छा नहीं था सूरह फातिहा की तफसीर हो जाती, इसकी जगह अच्छा नहीं था हम ज़रा वो सूरह रहमान की अगली सूरत भी कर लेते। हम बस दफ़ा कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन हम उसके अंदर से अपने अमल के लिए वो चीज़ें ले नहीं पाते। तो कुछ लोग हैं जिनको आप दावत देंगे कि आप ख़ुद को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे जी देखते हैं, मुश्किल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को सुनकर एकदम जोश में आएंगे, अपनी गाड़ी को ख़ुद स्टार्ट करने की ठान लेंगे। वो एक आध बार कोशिश करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे और कहेंगे इन्होंने बातें तो बड़ी अच्छी की थी लेकिन भला खादली बातों से गाड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है। यानी कुछ लोग खुद ही फिर कोशिश करेंगे बग़ैर स्ट्रेटजी बदले और फिर एक और नाकामी अपने नाम पर लिखवा कर और हिम्मत तोड़ेंगे। मैं कैसे जानता हूँ, इसलिए कि मेरे आसपास बहुत बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन जब नाकामी हुई तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और इल्ज़ाम उल्टा मुझ पर ही लगाया कि ख्वामखा हमारा वक्त और ताकत बर्बाद करवाई। एक तीसरी किस्म के लोग, पहले कौन जो इस सवाल के जवाब में बहाने बनाएंगे, दूसरे जो खुद ही कच्ची पक्की कोशिश कर कर उठ जाएंगे, तीसरी किस्म के लोग जो बिल आखिर मालूम करके रहेंगे कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, आखिर गाड़ी में मसला क्या है। आप इनमें से किस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं? आप सोचिए ज़रा, सबसे अक्लमंद कौन है? तीसरा, मसला ढूंढिए, बीमारी की जड़ पकड़िए। दवा भी तभी काम करती है जब बीमारी की जड़ पकड़ ली जाए। धक्के खाने के बाद आप दो काम कर सकते हैं। एक क्या होता है धक्के खाने के बाद? आप ढीठ बन जाएं, आप धक्के खाने के इतने आदी हो जाएं कि आपको धक्के खाने से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, आपको ये फिक्र ना हो कि आपको कौन कौन धक्का दे रहा है, किस तरफ आपको ले जा रहा है, किस तरफ को दे रहा है, किस तरह से दे रहा है। इसलिए कि आपने ये तय कर लिया है कि आप धक्कों के ही मुस्तहक हैं, यानी आप डिज़र्व करते हैं कि आपको धक्के पड़े। आपकी ज़िंदगी में धक्कों से निजात की ख्वाहिश सिरे से ख़त्म हो गई है, बल्कि अब तो ये हाल है कि जिस दिन धक्का ना पड़े आप हैरान होकर ऊपर देखते हैं और पूछते हैं क्या हो गया या अल्लाह, सब खैरियत तो है, आज किसी ने धक्का ही नहीं दिया। है आप में से कोई? आज कोई डांट ही नहीं पड़ी, आज किसी को गुस्सा ही नहीं आया हम पे। धक्के खाना आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाता है और आप पक्के किस्म के धक्काबाज और धक्का खोर बन जाते हैं धक्के खाने के आदि। आप हैरान मत होइए, आपने अपने आसपास ज़िंदगी में कितने ही ऐसे लोग देखे होंगे जिनको रोज़ धक्के पड़ रहे हैं, जिनकी इज्जत नफ्स हर लम्हा मजरूह होती है, जिनको हर रोज़ हालात की चक्की में पिसना पड़ता है, जिन्हें पैसों की वजह से, कई औरतें पैसों की वजह से धक्के खाती हैं, मर्दों से डांटे सुनती हैं, औलाद की वजह से, बहन भाइयों की वजह से, दोस्तों की वजह से, अपने कारोबारी साथियों की वजह से हर रोज़ धक्के खाने पड़ रहे हैं। वो इन धक्कों के इस हद तक आदि हो चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में बेहतरी की ख्वाहिश ही मौजूद नहीं रहती। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि धक्के खाने के अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं। आप अपने अंदर झांकिए, क्या आपने कभी धक्के खाए हैं? और ये सिर्फ जिस्मानी धक्कों की नहीं बात, क्या वाकई आपने कभी धक्के नहीं खाए? अगर आपने सचमुच धक्के खाए हैं तो क्या इन धक्कों के बाद आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, या आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की चाबी वहीं फेंक दी, इख्तिजाज में लग गए और मजलूमी की दास्तान बन गए? धक्के खाने के बाद दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि फट से स्टार्ट हो जाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक धक्का पड़ा और वो सर उठा के खड़े हो गए। इस धक्के ने इनको ऐसा स्टार्ट किया कि उन्होंने आज तक कभी ब्रेक नहीं लगाई, आगे ही आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने का, सर उठाकर जीने का ये अमल स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। बात है, वह पेट्रोल नहीं होता और हम खामखा उसके तारों को हिला रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी धक्कों की आदी कैसे हो गई? पहला जवाब जो कोई भी आपको दे सकता है वो यही होगा कि भाई, अगर गाड़ी धक्कों पर लगी हुई है तो गाड़ी को ठीक करवाओ। यकीनन इसके इंजन में कोई ना कोई ख़राबी होगी, इस ख़राबी को ढूंढो। धक्का स्टार्ट गाड़ी में कुछ तो ख़राबी है कि धक्कों पे लगी हुई है। ठीक गाड़ी को तो कोई नहीं धक्के देता, धक्का देंगे गाड़ी आगे से फर्श से भाग जाएगी, वो खुद ही गिर पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी है, लोग आपकी गाड़ी को धक्के मार रहे हैं, तो कसूर धक्के मारने वालों का नहीं है। बच्चों को भी इस बात का पता है कि ये गाड़ी के अंदर ख़राबी की वजह है जिसकी वजह से धक्के लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। आपको ज़िंदगी में धक्के पड़ेंगे तो आपको फ़ौरन समझ लेना चाहिए कि ख़राबी आपके अंदर है, बाहर वाले तो आपकी मदद कर रहे हैं। तो हमने ख़राबी को अंदर से ढूंढना है और उस ख़राबी को सही करना है। अगर मैं ख़ुद इसको सही करने की सलाहियत नहीं रखता और इसका फॉल्ट इतना बड़ा है तो किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जो इस खामी को दूर करने का माहिर हो। बहुत सारे मसले अपनी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिनको बंदा ख़ुद नहीं सॉल्व कर पाता, फिर उसके लिए किसी की मदद ले लेनी चाहिए। याद रखिए, धक्का पड़ना बदकिस्मती नहीं, खुशबख्ती की बात है। धक्का पड़ ही गया है तो इसका फ़ायदा उठा लें, स्टार्ट हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को जमूत से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर लें और इन लोगों के रास्ते से हट जाएं जो सर उठा के जीने के सफ़र पर निकल खड़े हुए हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजुर्बा जहन में लाएं, सोचिए कोई वक्त, फिर अल्लाह ने आपका हाथ थाम लिया, फिर अल्लाह ने आपको वो दे दिया जिसका लोग गुमान नहीं करते थे। तो ये सारी बातें पढ़ते हुए मुझे बहुत सारे हालात वाक़यात लोगों के याद आ रहे थे, कोई देखे हुए, कोई सुने हुए, कोई ऑब्ज़र्व किए हुए। लेकिन ये हकीकत है कि ज़िंदगी में लोग अपने अंदर की कमी को दूसरों का नक्स समझते हैं। एक वालिद जिनके बच्चे ज़रा आराम खोर कह लीजिए या बाप के कंधों पे तोप रख के चलाने वाले या उसको सहारा बनाने वाले थे, यानी बाप जितने कामयाब थे बेटे उतने नहीं थे, तो उनकी एक बात याद आती है। काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग थे, थोड़ा सा उनके ज़हन में हैवला है हमारे, लेकिन उनकी वो बात ख़ानदानी तौर पे आगे से आगे चलती आती। एक शेर पढ़ा करते थे अपने बेटों को देख कर, जो मुझे शेर तो पूरा नहीं आता होगा, लेकिन उसका खुलासा क्या था कि मुझे सहारा समझने वालों, अगर मैं लड़ खड़ाया तो किधर जाओगे। तो याद रखिए, जो अपने बड़ों पे टेक लगाते हैं ना, फिर बड़े नहीं रहते तो किधर जाएंगे। आपको अपने अंदर वो स्पिरिट और वो ईमान और वो जुरत और वो हिकमत ढूंढनी है जो आपको बाहर के सहारों से बेनियाज करते हैं। जो बाहर के सहारे होते हैं ना, ये साया देने के लिए होते हैं, सहारा देने के लिए नहीं। दौं का सहारा, एक पिक्चर थी किसी ने आज भेजी हुई थी कि कोई शख्स है तो वो सीढ़ी पे जा रहा है ना। अब आप इमेजिन कीजिए कि सीढ़ियाँ डिफरेंट, अब ऊपर भी सीढ़ियाँ नीचे भी है, जिस पर वो खड़ा है उससे आगे वो सीढ़ी टूट गई है और क्रैक्स आए हुए और गैप हो गया, तो उधर हाथ बना हुआ है। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि माँ बाप की दुआएं इस तरह काम करती हैं, जब ज़िंदगी की सीढ़ियाँ क्रैक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बीच में एक डंडी उतर गई, तो वहाँ माँ बाप की दुआ काम आती है। तो बड़ों से दुआएं लेनी चाहिए और अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे अंदर वो चीज़ उठे जो किसी को मिल सकता वो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। मैं इतनी फोहड़ूँ, मैं कुंदूँ, क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है? मुझे क्यों नहीं सूझती? किसी को कुछ ज़्यादा सूझती है? मेरी समझ ऐसे क्यों नहीं? आप देखेंगे जब आप खुद से ऐसे रीजनिंग करेंगे और अल्लाह से मांगे, मैंने तो हमेशा अल्लाह से मांगा और अल्लाह से मांगने वाले कभी महरूम नहीं रहते, वल्लाही। तो ज़िंदगी में चोटें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, हादसे आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लोग इतना नेगेटिव कमेंट करेंगे आपके ऊपर कि अब आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रहनी, लेकिन जब अल्लाह आपको देने पे आएगा, नवाजने पे आएगा, तो उन लोगों की दांतों के नीचे अपनी उंगलियां दब के कट जाएंगी कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया। लेकिन जो लोग लोगों की बातें सुन के कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, दुखी होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में खैर नहीं आती। मुझे एक सिस्टर याद आ जाती हैं, अच्छी खासी सिस्टर थी, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि शौहर ने छोड़ा या क्या हालात बने, जो भी होते ही होंगे ऐसे कुछ थे, तो उसके बाद वो बिल्कुल तन्हाई पसंद हो गई, घर में बैठ गई, मस्जिद भी नहीं जाती थी नमाज के लिए, कहती थी औरतें मुझे देखती हैं, औरतें मुझसे पूछती हैं, कभी लड़की महके आई हो ना तो इसलिए भी लड़कियां परेशान होती हैं कि दूसरों की नज़रें लग जाती हैं, कोई बात है ज़रूर, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब ऐसे वक्त में लोगों की बातें आपके लिए या तो एक स्टार्टिंग फोर्स बन सकती है और या फिर आप कुछ भी हो। तो वो सिस्टर जो थी ना, वो बहुत डिप्रेस हो गई थी, फिर दीन ने उनको सहारा दिया कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की क्या परवाह है। फिर इसी तरह एक और सिस्टर की बात मुझे याद आती है कि ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ, फिर एक और हादसा हुआ। हादसे होते हैं ये जो आपको आगे ले जाएं, वो हादसे नहीं, वो बड़े खुशकिस्मती हों के जीने बन जाते हैं। तो किसी ने उनके लिए कमेंट किया, अच्छा अब इसकी ज़िंदगी में कहाँ कोई खुशी आनी है, कोई स्किल ले ले, कोई हुनर ले ले, चलो पढ़ ले, लिख ले, कोई जॉब कर लेगी अगली ज़िंदगी में। तो मेरा जो ज़ाती गुमान है कि आज वही दोनों को अगर कंपेयर करें तो वो जिस पे उन्होंने कमेंट किया था वो आज उनसे हज़ार हा गुना खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं और उनकी अपनी बेटियाँ शायद दुखी होंगी। तो कभी हिम्मत ना हारें, कोई नाकामी आखिरी नाकामी नहीं होती। आप एक दफ़ा कोई गलती करते हैं, इट्स फाइन, फिर सही। आपने वो सुना होगा ना, अमीर तैमूर था मेरा ख्याल है, मुसलसल हार, मुसलसल हार, थक हार के आके टेक लगा के बैठा, देखा एक चींटी कोई दाना लेके जा रही है, ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़े, उसको भी तो धक्के ही पड़े थे ना, फिर नए सिरे से गिरती पड़ती, तो समझ गया ये चींटी इतनी छोटी हो गई, हिम्मत नहीं हारी, मैं एक शिकस्त से क्यों हारूं। और जिस दिन आपका दिमाग फ्रेश होगा ना, आपका जहन काम करेगा, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हवा चलेगी कामयाबियों की, आपको खुद पता चलेगा कि आप, मैं ठीक ट्रैक पर आ गई हूँ। और अगर आप महरूमियों की दास्तान बने रहेंगे तो फिर आपको होता है महरूमों को तो और भी महरूमी मिलती है। अब आप लोग शेयर करें क्या सीखा।
सोच जो होती है ना इंसान को बदल देती है।
बिल्कुल, अच्छी सोच रखेंगे, बड़ी सोच रखें, बड़ी सोच रखें। मैं कहती आप 101 दफ़ा लेट आए हैं ना, आप फिर भी कह नहीं, इंशाल्लाह आज 100वें दिन मैंने जल्दी पहुंचना है, आप जल्दी चले जाएंगे। और आप कहें मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरी तो हिम्मत ही नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो। जी बिल्कुल। और सेल्फ मोटिवेशन तकवा का दूसरा नाम है, लिख लें ये बड़ा बड़ा अपनी ज़िंदगी में। तकवा जो है ना, ये आपको स्टार्ट करता है अंदर से जज्बे उभरते हैं नेकियों के करने के। कोई पट्टी थोड़ी किसी को पढ़ाता है ये नेकी कर लो। आप जो सहाबा जंगों में आगे लग के गए, जिनको आइडियाज़ आते थे, जो आके अल्लाह के नबी को कहते थे, अल्लाह के नबी को मार का, अल्लाह के नबी को महाज, अल्लाह के नबी बदर में नहीं जा सके कुछ और, तो कि अल्लाह के नबी उनको कोई अलग से बिठा के सिखाते थे, वो उनका अंदर का शौक नहीं सोने देता था। और कई ऐसे भी थे जो कन्नी कतरा लेते थे, अच्छा अभी तो जंग का मौका ही नहीं आया, अल्लाह के नबी ने पता नहीं क्यों जंग डिक्लेयर कर दी है। तो तकवा मांगे, खौफ मांगे, अपनी मौत का वक्त, हशियत, इतनी थोड़ी ज़िंदगी है, आप देखेंगे एकदम अफ्रेश हो जाएंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ हमारी ज़िंदगी में एक छोटा सा उज़र आता है, देखिए वो 101% सच्चा उज़र होता है, आप बीमार हैं ये सच है, आपका बच्चा बीमार है ये सच है, लेकिन ये सच आपको कैसे रोक ले आपके रास्ते से? ये भी तो सच है ना कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। सुबह आप में से कोई कह रहा था कि वो पहली दफ़ा अपने बच्चे को बीमार छोड़ के आई हैं, फ़ोन किया आपने घर में ब्रेक में, फ़ोन नहीं उठाया, आपको कोई फिक्र है क्या है, बेनियाज है ना। और आप पास होती तो क्या करती, हो सकता है उसको और बीमार कर देते। जितना इंसान अपने बच्चों को देखता है उतना और बीमार कर देता है। तो अल्लाह ताला इनके भी बच्चे को और सबके बच्चों को सेहत दे। आगे तो भी सख्त दिन आने वाले हैं, और आप सब याद रखें वाइट स्काफ वाले, अगर अभी से आप घर से सुनने के आदी हो गए तो आप सूरत बकरा से आगे नहीं जा सकेंगे। इधर आपको लिंक मिल जाए पक्का पकाया तो आपने क्या करना इधर आके, और आप गवाही देंगे इस बात के कि जो यहाँ आके बैठ के आप सीखते हैं वो घर में लिंक ले के भी नहीं सीखते, घर बैठ के भी नहीं वैसे सीखते। माहौल ये दीवारें आपको सिखाती हैं, ये माइक सिखाता है, ये इधर बैठना है उठना नहीं, सेलफोन बंद कर दें, वॉशरूम में नहीं जाना, ये चीज़ें सिखाती हैं। तो घर में कहाँ हम इतना सब्र करते, इतना सब्र करने वाले लोग होते तो फिर बच्चे घरों में पढ़ लेते। तो हमें अपने आप को खुद बांधें, ये अल्लाह ने आपको दौलत दी है और अल्लाह बेनियाज है, वल्लाही अल्लाह बेनियाज है। लोग उतने ही होते हैं और आ जाते हैं, हमारी कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है। मुश्किलों के साथ हम कहते हैं मुश्किलों के बाद है, ये ज़िंदगी में चलती रहेगी साथ साथ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें मज़ीद धक्के लगने से पहले हम अपने आप को संवार कर लें और हम स्टार्ट कर लें। आप भागें, आपको कभी धक्के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप देखिए आप फंस जाते हैं ना जहाँ, फिर धक्के पड़ते हैं। आप किसी भी जगह सोचें ना, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए, खाने की लाइन में धक्के, बाहर जूते पहनने में धक्के, तो अब अगर आगे होंगे तो आपको धक्के नहीं देंगे लोग। तो जो लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं फिर अल्लाह के हुक्म से वो उस थ्रेश होल्ड से आज़ाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।